नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। संसद ने इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात अधिकांश राज्यों के लिए 60% और 40% होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90% और 10% होगा। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी को समय पर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान लेगा। अमन यादव के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम मनरेगा का संवर्धित रूप है, जो विकास और गरीबों के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों और अन्नदाताओं की अहम भूमिका है और सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखते हुए ये बात कही। इस संयंत्र की वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी और परियोजना का संचालन 2030 में शुरू होने की उम्मीद है। उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नया यूरिया संयंत्र जल्द ही देश के किसानों के लिए उर्वरक की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने से आपूर्ति तेज होगी और हजारों नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी, लॉजिस्टिक का खर्चा घटेगा। नाम रूप की ये यूनिट रोजगार स्वरोजगार के हजारों नए अवसर भी बनाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायत चुनावों में जीत और सुशासन की राजनीति को समर्थन देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि ये जीत राज्य के बदलाव के लिए काम करते रहने के संकल्प को मजबूत करती है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि अरावली की पारिस्थितिकी को कोई तत्काल खतरा नहीं है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि वृक्षारोपण, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचनाओं और खनन तथा शहरी गतिविधियों की कड़ी निगरानी से ये सुनिश्चित होता है कि अरावली प्राकृतिक धरोहर और पारिस्थितिक कवच के रूप में कार्य करती रहे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए मंत्रालय ने कहा कि अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भूभाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली किसी भी भू आकृति को संरक्षित किया गया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने किसी तरह की सुरक्षा तोड़ने की कोशिश नहीं की। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि कल बांग्लादेश के मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में 20 से 25 युवकों ने बांग्लादेश के उच्चायोग के सामने एकजुट होकर नारे लगाए थे। सरकार के ई मार्केट प्लेस GeM पर नवंबर तक 11 लाख से अधिक पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम MSE विक्रेता दर्ज किए गए। इन विक्रेताओं को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों का ऑर्डर प्राप्त हुआ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ये ऑर्डर GeM के माध्यम से हुए कुल ऑर्डर के 44% से अधिक हैं। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच पहले T20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत को 122 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 32 गेंद शेष रहते ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से जेमिमा रॉड्रिक्स ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।